आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने क्लास टेंथ की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 9 को आधा पढ़ा था, जिसका नाम है भोली। स्टूडेंट्स, आगे की स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको जो हमने पढ़ा है उसका रिकैप दे देती हूँ। सुलेखा नाम की लड़की, जिसे सभी भोली भोली कहकर बुलाते थे, वो बचपन में चारपाई से नीचे गिर गई थी सिर के बल, जिसकी वजह से उसके दिमाग में चोट लग गई थी और उस वजह से वो एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। 2 साल की उम्र में चेचक का रोग उसे लग गया, जिस वजह से उसके चेहरे पर बड़े बड़े काले काले धब्बे हो गए और अब ना तो सुलेखा इंटेलिजेंट थी और ना ही सुंदर। सुलेखा नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी। नंबरदार के बाकी सारे बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग थे, लेकिन सुलेखा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए नंबरदार रामलाल उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता था। एक बार की बात है, गांव में तहसीलदार साहिब लड़कियों के प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में आए, यानी उद्घाटन करने के लिए आए, और वहां पर उन्होंने नंबरदार रामलाल से कहा कि तुम्हें गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। जब नंबरदार रामलाल ने ये बात अपनी बीवी से कही तो उसकी बीवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजा जाएगा तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनकी पिछड़ी हुई सोच थी। उन्हें लगता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें बस घर के कामकाज सिखाने चाहिए, ताकि जब उनकी शादी हो जाए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। वो लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने पर विचार नहीं करती थी। लेकिन नंबरदार रामलाल तहसीलदार साहिब की बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसीलिए नंबरदार अगले दिन भोली को स्कूल में लेकर चले गए। स्कूल ले जाते वक्त भोली बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए और उसके बाल भी अच्छे से बनाए गए तो भोली को ये विश्वास हो गया कि स्कूल एक ऐसी जगह है जो उनके घर से काफी अच्छी है। जब भोली स्कूल में गई तो नंबरदार रामलाल ने हेडमिस्ट्रेस को भोली को सौंप दिया। फिर हेडमिस्ट्रेस भोली को एक कमरे में लेकर गई। जब भोली स्कूल में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे कमरे हैं जहां पर लड़कियां बैठी हुई हैं चटाइयों पर, या तो वो बुक्स में से कुछ पढ़ रही हैं या फिर स्लेट्स पर कुछ लिख रही हैं। भोली भी ऐसे ही एक क्लासरूम में कोने में जाकर बैठ गई। वहां पर टीचर कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन भोली को उसकी एक भी बात समझ में ना आई। भोली दीवार पर लगे हुए चित्रों को देख रही थी। वहां पर उसने देखा कि घोड़े बिल्कुल वैसा ही है जैसा तहसीलदार साहिब के पास है, गायें बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है जो उनकी गायें थी, पैरट्स भी वैसे ही, डॉग्स भी वैसे ही हैं। तो भोली को ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। साथ ही भोली को ये भी उम्मीद थी कि इतनी सारी लड़कियों में जो लगभग उसी की एज की हैं, कोई ना कोई उसकी दोस्त जरूर बन जाएगी। जब भोली का ध्यान उन सारे चित्रों में था, भोली ने पाया कि वह जो टीचर उन्हें पढ़ा रही थी वो भोली के पास आकर खड़ी हो गई है और भोली की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। भोली थोड़ा डर गई। फिर टीचर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। भोली ने बोलने की कोशिश की, लेकिन भोली बचपन से ही हकलाती थी और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए भोली बहुत कम बोलती थी। फिर भोली ने हकलाते हुए अपना नाम बोलना शुरू किया, लेकिन भोली नहीं बोल पाई और फिर वो रोने लगी। आसपास की लड़कियां सारी उस पर हंसने लगी। भोली नीचे मुंह करकर चुपचाप कोने में बैठी रही। फिर स्कूल की घंटी बज गई और सारी लड़कियां भागी भागी क्लास से बाहर चली गई, लेकिन भोली अभी भी वहीं बैठी थी। टीचर उसके पास आई। टीचर ने कहा, बेटा उठ जाओ। और फिर टीचर ने उसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, एक बार जब तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओगी, एक एजुकेटेड पर्सन बन जाओगी, तब तुम भी बाकी लोगों की तरह अच्छे से बोलना सीख जाओगी और तब तुम हकलाओगे भी नहीं। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और सभी तुम्हारी बात सुनेंगे और कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। भोली अब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो चुकी थी, क्योंकि जो टीचर थी वो भोली से बहुत अच्छे से बात करती थी। भोली से कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था, इसलिए भोली के मन में टीचर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। उसके बाद टीचर ने भोली को एक किताब दी और उसे कहा कि अभी तुम ये किताब लो, 1 महीने में तुम इसे पढ़ लोगी, उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी बड़ी बुक, ऐसे करके तुम बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन बन जाओगी। फिर टीचर ने कहा कि अभी तुम घर जाओ और कल सुबह दोबारा यहाँ पर आ जाना। भोली के मन में एक नई आशा थी। भोली को लगा कि गांव के मंदिर की सभी घंटियां अचानक बजने लगी हैं और स्कूल के सामने के पेड़ में लाल फूल खिल उठे हैं। अब उसे लग रहा था कि उसका जीवन वैसे नहीं रहेगा, वो जैसे घर में निग्लेक्ट होती रही है, कोई भी उसे प्यार नहीं करता, वैसा उसका जीवन नहीं रहेगा, बल्कि वो पढ़ लिख कर एक सम्माननीय जिंदगी जीने लगेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने स्टोरी को पढ़ लिया था। अब आगे की स्टोरी को पढ़ने के लिए आप पेज नंबर 58 पर आइए। Thus द ईयर्स पास्ड, ऐसे काफी साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। द मेल ट्रेन began to stop at their railway station. गांव एक छोटा कस्बा बन गया। छोटी सी प्राथमिक पाठशाला हाई स्कूल बन गई। अब टिन शेड के नीचे एक सिनेमा घर और बिनोले से रुई अलग करने का कारखाना भी लग चुका था। मेल गाड़ी अब उनके स्टेशन पर रुकने लगी थी। One night, after dinner, Ramlal said to his wife, Then, shall I accept Bishamber's proposal? एक रात खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं बिशंबर का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं?
Yes, certainly, his wife said.
Bhuli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear Several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. उसकी पत्नी ने कहा, हाँ जरूर, भोली ऐसे धनी दूल्हे को पाने पर भाग्यशाली होगी। एक बड़ी दुकान, अपना मकान, और मैंने सुना है कि अनेकों हजार रुपए उसके बैंक में जमा हैं। इससे बड़ी बात ये है कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है।
That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up.
फिर नंबरदार रामलाल ने कहा, ये तो ठीक है, पर वो इतना जवान नहीं है। तुम तो जानती ही हो कि वो लगभग मेरी एज का है, और वो लंगड़ाता भी है। इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 49 पर आइए। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स And lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life.
उसकी पत्नी ने कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 या 50? एक आदमी के लिए ये कोई बड़ी एज नहीं होती। हम सौभाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है और वह उसके चेचक के दाग से भरे हुए चेहरे के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो सारी जिंदगी कुवारी ही रह जाएगी।
Yes, but I wonder what Bhuli will say.
तब नंबरदार रामलाल ने कहा, हाँ, लेकिन भोली क्या कहेगी?
What will that witless one say? She is like a dumb cow.
तब उसकी पत्नी ने कहा, वो बेवकूफ क्या कहेगी? वो तो एक मूक गाय की तरह है।
Maybe you are right, muttered रामलाल।
हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, रामलाल ने बड़बड़ाते हुए कहा।
In the other corner of the courtyard, Bhuli lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation.
आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई लेटी हुई थी और वो अपने माता पिता की धीमी आवाज में हो रही बातों को सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her luck. Bishambarnath एक धनी पंसारी था। वो दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी को साथ लेकर अपनी शादी के लिए आया। एक बैंड किसी भारतीय फिल्म का एक लोकप्रिय गाना गाते हुए आगे आगे चल रहा था। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल इतनी ठाट बाट और शानो शौकत देखकर फूला न समाया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोली की बड़ी बहनें इस मौके पर हाजिर थी। उन्हें भोली की किस्मत पर ईर्ष्या होने लगी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शुभ घड़ी आई तो पंडित जी ने कहा, दुल्हन को ले आओ। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली जिसने दुल्हन के लाल रेशमी साड़ी पहने हुई थी sacred fire यानी अग्नि के पास लाई गई। Garland the bride, one of his friends prompted Bishambarnath. बिशंबर के एक दोस्त ने उसे उकसाया, दुल्हन को माला पहनाओ। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों की माला उठाई। एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। बिशंबर ने भोले के चेहरे की ओर निगाहें डाली। जयमाला उसके हाथों में ठहर गई। तब दुल्हन ने पीछे से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया।
Have you seen her?
said Bishambar to the friend next to him. She has pock marks on her face. बिशंबर ने अपने पास खड़े हुए दोस्त से कहा, क्या तुमने उसे देखा? उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं।
So what? You are not young either.
उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो।
Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees.
तब बिशंबर ने कहा, हो सकता है, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपए दहेज में देने ही होंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor at Bishambar's feet.
Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees.
रामलाल आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी उतारकर बिशंबर के पैरों में रख दी। उसने कहा, मुझे इस तरह लज्जित मत करो, 2,000 रुपए ले लो।
No, 5,000 rupees or we go back. Keep your daughter.
बिशंबर ने कहा, नहीं, 5,000 रुपए, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को घर बैठा लो।
Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village.
तब रामलाल ने कहा, मुझ पर कुछ तो रहम कीजिए, अगर आप वापस चले गए तो मैं गांव में किसी को भी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा।
Then, out with 5,000.
बिशंबर ने कहा, तो फिर 5,000 रुपए निकालो।
Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet.
आंखों में आंसू लिए रामलाल घर के अंदर गया. उसने तिजोरी खोली और नोटों की गिनती की. उसने नोटों का बंडल दूल्हे के पैरों में रख दिया.
चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 60 पर आइए. On Bishamber's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced.
बिशंबर के लालची चेहरे पर विजय की मुस्कान आ गई. उसने जुआ खेला था और वो जीत गया था. उसने घोषणा की कि मुझे जयमाला दो.
Once again, the wheel was slipped back from the bride's face. But this time, her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes, there was neither anger nor hate, only cold contempt.
एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे पर से घूंघट हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी नजरें नीचे झुकी हुई नहीं थी. वो ऊपर की ओर सीधा अपने होने वाले पति की ओर देख रही थी और उसके आंखों में कोई गुस्सा या घृणा नहीं थी, बस एक ठंडी नफरत थी.
बिशंबर raised the garland to place it round the bride's neck. But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel.
बिशंबर ने दुल्हन के गले में जयमाला डालनी चाही, पर वे जयमाला डाल पाता उससे पहले ही भोली का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने जयमाला आग में गिरा दी. वो उठ खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट उतार फेंका.
पिताजी, said Bholi in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer.
पिताजी, Bholi ने बिल्कुल साफ आवाज में कहा और उसके पिता, माँ, बहने, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे बिना किसी हिचक के बोलते हुए देखकर चौंक गए.
पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन.
भोली ने कहा, पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली.
चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 61 पर आइए.
रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर.
सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस.
रामलाल दंग रह गया. मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई. इतनी बेशरम, इतनी कुरूप और इतनी बेशरम.
Bholi, are you crazy?
shouted रामलाल.
You want to disgrace your family?
Have some regard for our izzat.
रामलाल चिल्लाया, Bholi, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है?
For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man. But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't.
Bholi ne kaha, आपकी इज्जत की खातिर मैं इस लंगड़े भूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार हुई थी, लेकिन मैं अपने पति के रूप में ऐसे नीच, लोभी और घृणित कायर इंसान को स्वीकार नहीं करूंगी. मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी.
What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow.
इतने जो आसपास लोग खड़े थे उनमें फुसफुसाहट और बढ़ गई. कितनी बेशरम लड़की है, हम सबने सोचा था कि ये एक बेचारी गूंगी गाय है.
Bholi turned violently on the old women.
Yes, auntie, you are right. You all thought that I was a dumb-driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature.
But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more?
भोली उस बूढ़ी औरत की ओर तेजी से मुड़ी। उसने कहा, जी हाँ चाची, आप ठीक कहती हैं। आप सबने सोचा था कि मैं बेजुबान गाय हूँ, इसी वजह से आप मुझे इस बिना दिल के जीव को सौंप देना चाहती थी। पर अब गूंगी गाय जो हकलाती हुई मूर्ख थी बोल रही है, क्या आप और कुछ सुनना चाहती हैं?
बिशंबर नाथ द ग्रॉसर started to go back with his party. The confused bandsman thought that this was the end of the ceremony and struck up a closing song.
Bishambarnath, jo pansari tha, apni party ke saath wapis jane laga.
Band wale jo confused the, unhone ye socha ki vivah sampann ho gaya hai, isliye unhone vidai wala geet bajana shuru kar diya. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame.
Ramlal jaise zameen mein gad gaya tha, uska sir dukh aur sharam se niche chuka hua tha.
The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said,
but what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?
पवित्र अग्नि की लौ धीरे धीरे बुझ गई। वहां मौजूद हर इंसान अब वापस जा चुका था। रामलाल भोली की ओर मुड़ा और उससे पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे?
And Sulekha said in a voice that was calm and steady,
don't worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother. And I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?
और सुलेखा ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना सब सीखा है। क्या यही ठीक रहेगा मैम?
The teacher had all along stood in a corner watching the drama.
Yes, Bholi, of course, she replied. And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece.
टीचर इस दौरान एक कोने में खड़ी हुई इस सारे नाटक को देख रही थी। उसने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं भूली, और उसके मुस्कान में गहरे संतोष का भाव था, जैसे कलाकार महसूस करता है जब वो अपने मास्टरपीस को पूरा होते हुए देखता है।
तो ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 61 पर दिए गए ग्लॉसरी पार्ट को पढ़ते हैं। Simpleton, a foolish person easily tricked by others. Simpleton, एक ऐसे मूर्ख इंसान को कहते हैं जिसे कोई भी मूर्ख बना सकता है। Numberdar, an official who collects revenue. Revenue official को नंबरदार कहते हैं। Matted, entangled. Matted का मतलब है उलझे हुए। Squatted, sat on their heels. Squatted का मतलब है चौकड़ी मारकर बैठना। Scurried, ran or moved hurriedly. Scurried का मतलब है तेजी से भागना। Ginning, separating raw cotton from its seeds. Ginning का मतलब है कि बिनोलों में से कॉटन को यानी कपास को अलग करना। Downcast, looking downwards. Downcast का मतलब है नीचे की तरफ देखना। चलिए स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 62 पर आइए, हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, भोली हैड मैनी एप्रिहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम।
स्कूल जाने के बारे में भूली के मन में अलग अलग तरह के डर थे। उसे यह एहसास कैसे हुआ कि वो अपने घर से किसी ज्यादा अच्छी जगह जा रही थी? इसका आंसर है, भूली वॉज अफ्रेड ऑफ स्कूल। शी एप्रिहेंडेड दैट शी वॉज बींग टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस लाइक देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी। बट भूली वॉज गिवन अ क्लीन ड्रेस। शी वॉज इवन बेथ ऑयल विद एंड हर मेटेड हेयर वर नीटली टाइड। Only then did Bholi realize that she was being taken to a place better than her home. Bholi school se darti thi, use dar tha ki use ghar se bahar nikala ja raha hai jaise unki boodi gaay Lakshmi ko nikal diya gaya tha. Lekin Bholi ko ek saaf sutri poshak di gayi. Use nehlaya gaya, uske sookhe aur uljhe baalon mein tel ki malish ki gayi. सिर्फ तभी भोली को यह एहसास हुआ कि वो अपने घर से किसी ज्यादा अच्छी जगह पर जा रही है। क्वेश्चन टू, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? भोली के जीवन में परिवर्तन लाने में उसकी टीचर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा की? इसका आंसर है, भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। शी एक्टेड मोर देन भोलीज पेरेंट्स। शी शोड लव and affection to her. She told her that she would be able to speak without stammering. No one would laugh at her. People would listen to her with respect. She filled her with confidence. Bholi ke adhyapika ne uske jeevan mein parivartan lane mein mahatvapurna bhumika nibhai. Usne uske mata pita se bhi zyada uske liye kiya. Usne Bholi ke prati pyar ka pradarshan kiya. Usne Bholi ko bataya ki yadi वो स्कूल जाएगी तो वो बिना किसी हकलाहट के बोल सकेगी। कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। लोग आदर के साथ उसके बात को सुनेंगे। उसने भोली में विश्वास भर दिया था। क्वेश्चन थ्री, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू बी एन अनइक्वल मैच? व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? भोली पहले बेमेल शादी करने के लिए सहमत क्यों हो गई थी? बाद में उसने इस विवाह को नामंजूर क्यों कर दिया और इससे हम भोली के बारे में क्या जान पाए हैं? भोली एट फर्स्ट एग्रीड टू एन अनइक्वल मैच बिकॉज शी वॉज नॉट आस्क्ड अबाउट इट। व्हेन हर फादर आस्क्ड हर मदर अबाउट हर रिएक्शन, हर मदर कॉल्ड हर विटलेस। शी कॉल्ड भोली अ डम काउ। शी वॉन्ट से एनीथिंग। भोली लेटर रिजेक्टेड द मैरिज। It was because the bridegroom demanded a dowry of 5,000 rupees. Bholi knew that Bishamber was a greedy person. She therefore refused to marry him. Bholi पहले इस बेमेल शादी के लिए सहमत हो गई थी क्योंकि इसके बारे में उससे पूछा ही नहीं गया था। जब उसके पिता ने भोली की माँ से उसकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने भोली को बुद्धिहीन बताया। उसने कहा कि भोली तो एक गूंगी गायक के जैसी है, वे इसके बारे में कुछ भी नहीं करेगी। बाद में भोली ने इस विवाह को अस्वीकार कर दिया क्योंकि दूल्हे ने दहेज के रूप में 5,000 रुपए की मांग की थी। भोली जान गई थी कि बिशंबर एक बहुत लालची इंसान है, इसीलिए भोली ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन फोर, भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग बट ओनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी is Bholi called Sulekha again? Why do you think she is called Sulekha at that point of in the story? Hame paath ke prarambh mein ye bataya jata hai ki Bholi ka vastavik naam Sulekha hai, lekin keval kahani ke antim paire se pehle use fir se Sulekha ke naam se pukara gaya. Aapke vichar se use kahani ke is bindu par Sulekha ke naam se kyu pukara jata hai? Iska answer hai, Bholi's real name is Sulekha. She is called Bholi at the beginning of the story. It is because she lacks sense. Bholi means a simple-hearted girl. But in the end, she is not Bholi. She is now an intelligent girl. She is very confident. So, she is called by her real name, Sulekha. Bholi ka vastavik naam Sulekha hai. Kahani ki shuru mein vah isi naam se pukari jati hai. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें समझ की कमी थी। भोली
का अर्थ है सीधी साधी लड़की, लेकिन कहानी के अंत में भोली भोली नहीं रहती, अब वो एक बुद्धिमान लड़की है, उसमें बहुत आत्मविश्वास है, इसलिए अंत में उसे फिर से उसके वास्तविक नाम सुलेखा से पुकारा जाता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आपका होमवर्क है कि आपको इस स्टोरी को दोबारा पढ़कर आना है और उसके बाद एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।